महासंकर्षण मूल संकर्षण से निकलते हैं जो द्वारका में द्वारकाधीश की तरह तरह से सेवा करते हैं, रुक्मिणी इत्यादि सत्यभामा और सब जितने हैं उनके परिकर होकर। और तीसरे निकलते हैं कर्णाधिपति, अरे नहीं, महासंकर्षण होकर के वैकुंठ धाम में, वे अनंत कोटि जो जितने भी वैकुंठ हैं, जितने भी भगवान के अवतार हैं, उन सब अवतारों की सेवा करते हैं। राम, नृसिंह, नारायण जितने भी हैं उनकी ये यहाँ से महासंकर्षण से निकल करके तब सेवा करते हैं। और चौथे हैं कर्णाधिशायी से तटस्थ शक्ति के यहाँ से इनसे निकलते हैं, कर्णाधिशायी से निकलते हैं। ये लोग बद्ध और मुक्त दोनों प्रकार के हैं। एक बद्ध होकर के चले जाते हैं, तो मुक्त वो कभी जगत को नहीं देखा उधर चले जाते हैं, और तटस्थ शक्ति से ही दूसरे माया की तरफ में दे करके महामाया के प्रभाव से इस जगत में घूमते हैं। चलो आगे बढ़ो। वेरी गुड। सिद्धांत श्लोक है, धर्म सुनिश्चितां पुंस विश्वक्षेन कथा सुज नोत्पाद्य जदिरतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म अच्छी तरह से आप अनुशीलन कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, भक्ति भी आप अनुष्ठान कर रहे हो, किंतु हरि कथा में रुचि नहीं है तो सब कुछ पंडश्रम है, बेकार का है। एक आदमी हरि कथा सुन रहा है, हरि कथा हो रही, मैं नहीं जानता कि आज इतनी सुंदर रूप में विश्व में कहीं भी, सारे ब्रज में, नवदीप धाम में या कहीं भी इतनी सुंदर हरि कथा हो रही होगी, हमको तो पता नहीं है। बड़े बड़े विद्वान लोग भी आते हैं, उस दिन आए थे, किंतु मैं समझता हूं कि उससे भी हरि कथा वैष्णव के द्वारा ये बड़ी सुंदर कथा सुना। शब्दाडंबर हो सकता है, अलंकार शब्दों के हो सकते हैं, किंतु हम लोगों की यहां पर वैष्णव ने, छोटे बच्चों ने जिस प्रकार से बलदेव प्रभु जी का तब तो बतलाया, बड़ी बड़ी सभाओं में ये सब चीज संभव पर नहीं है। मन ने कि ऐसी सुंदर हरि कथा हो रही हो और एक आदमी मंदिर की परिक्रमा कर रहा, एक आदमी गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहा हो, एक आदमी अभी वृंदावन की परिक्रमा कर रहा हो, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? एक हरि कथा सुन रहा और एक गिरिराज गोवर्धन की वृंदावन की परिक्रमा कर रहा है, या यहां पर राधा विनोद बिहारी जी की परिक्रमा कर रहा है, कोई झूले की रस्सी लेकर के ऐसे दुला रहा हो, कौन श्रेष्ठ है? जो हरि कथा सुन रहा है वो लाखों गुना, एक गुण नहीं करोड़ गुना। वृंदावन की परिक्रमा करने वाला लाखों जन्मों में धाम की कृपा है तो लाभ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर में बहुत से अनर्थ भी हो सकते हैं, किंतु हरि कथा से चित्त निर्मल हो जाता है। बहुत से ऐसे दुर्भागा लोग हैं जो हरि कथा में रुचि नहीं है, उनका कल्याण होना महा कठिन है। जिनको ऐसे हरि कथा में रुचि नहीं है, सब कुछ करते हैं, शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, किंतु हरि कथा में रुचि नहीं है, पंडशेषम, ये छोटे छोटे बच्चे देखने में मालूम पड़ते हैं, संस्कृत भी नहीं जानते, किंतु बड़े बड़े पंडित लोग, अगाध पंडित लोग, यहां तक कि यहाँ के संस्कृत के विद्यालयों के पंडित लोग भी, जो अभी हरि कथा आलोचित हुई उसके पदधूलि को भी स्पर्श नहीं कर सकते। बड़े बड़े विद्वान हो सकते हैं किंतु इन तत्वों को स्पर्श नहीं कर सकते। कितनी सुंदर सुंदर कथा हुई। इसलिए तुम लोग धन्य हो, हर कथा में ऐसे रुचि रहे। रुचि नहीं जाने पर भी बैठे रहो, जमकर उठो मत, बैठे रहो। हरि कथा के द्वारा जितना कल्याण होगा, उतना अर्चन के द्वारा, उतना और किसी भी भक्ति के अंगों से नहीं होगा। इसलिए प्रश्न पहले है श्रवणम, तब इसके बाद में कीर्तन। इस चीज को अच्छी तरह से याद रखो। कुल पढ़ लिख करके, वेदों को, शास्त्रों को, भागवत करके इतने सुंदर सुंदर निष्कर्ष निकाल सकता है? ये कभी संभव नहीं है। यहां तक कि ये पाश्चात्य देश के इन लोगों ने जो बतलाए, नंद किशोर जी, श्याम रानी, और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बड़े बड़े भारतीय विद्वान लोग भी, संस्कृत के और वृंदावन के रहने वाले भी नहीं बता सकते। मैं गारंटी देकर के कह सकता हूँ, ये लोग सुन करके इन चीजों, इसलिए ये स्तुति विद्या है। इस चीज को समझो। इसलिए हरि कथा में कभी अरुचि न होनी चाहिए, उसमें सारे काम रख दो और रख करके हरि कथा श्रवण करो। तब हाँ, हरि कथा के पोषण के लिए, ऐसी सेवा के बिना यदि हरि कथा नहीं होती है तो वो भी हरि कथा के बराबर ही है, किंतु हरि कथा ही श्रेष्ठ है। आज बलदेव प्रभु जी का आविर्भाव, हमें अभी मथुरा जाना है बहुत जल्दी, इसलिए संक्षेप में सबसे बोलवाया, और बाकी जो रह गए मथुरा में बोलेंगे। मथुरा के लिए भी कुछ छोड़ दिया जाए। मैं संक्षेप में दो एक बातें बतलाता हूं। पहली बात ये कि शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है, गर्ग संहिता इत्यादि में, कि बलदेव छठ होती है बलदेव के लिए, पूर्णिमा नहीं। छठ कब आएगी? कृष्ण के जन्म के बाद में छठ जो आएगी, उसमें उनका जन्म हुआ है। राधाष्टमी के दो दिन पहले जो आती है छठ, उसमें। और ब्रज के सारे, ब्रज के लोग उसी छठ को ही बलदेव जी का छठ मान करके दाऊ जी में या और जगहों में उनका आविर्भाव उत्सव मनाते हैं, सारे ब्रज में। मथुरा में भी जहां जहां दाऊ जी के मंदिर हैं, सब जगह बलदेव छठ मनती है। किंतु केवल हमारे संप्रदाय में, केवल हम लोगों के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, और किसी संप्रदाय में नहीं। बाबा जी भी मानते हैं कुछ, तो केवल हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, विशेष करके जो गोपाल चंपू लोग पढ़े हैं, वो लोग जरूर इस बलदेव पूर्णिमा को मानेंगे। राखी माने क्या होता है? राखी जो रक्षा करते हैं, जिसको बल नहीं है वो रक्षा कर सकता है, जिसको बल है वही रक्षा कर सकता है। इसलिए ये राखी के भी, उत्सव के भी असली शास्त्री देवता ये बलदेव प्रभु ही है। इसलिए अनंत, आज के राखी के दिन में अनंत बनता है, राखी बनती है। इसके मूल बलदेव प्रभु जी हैं, अनंत देव जी हैं। इसलिए सोने का अनंत कोई पहनते हैं, तांबे का कोई कुछ, इसी से उनकी रक्षा के लिए। बलदेव जी कृष्ण से 8 दिन बड़े हैं, 8 दिन पहले आते हैं। यदि ऐसा नहीं बलदेव छाछ मानते हैं तो करीब करीब 1 वर्ष के करीब में, थोड़ा सा 2-4 दिन कम, वो बड़े हो जाते हैं बलदेव प्रभु। आ रहा है समझ में? कैसे?
7 दिन,
1 वर्ष से 7 दिन कम बलदेव जी बड़े हो जाएंगे। 1 वर्ष का अंतर यदि जन्म में रहा तो एक साथ में दोनों का नामकरण, एक साथ में दोनों का और सब उत्सव, एक साथ में घुटुरुओं पर चलना, एक साथ में और सब ब्रह्मांड घाट की लीलाएं, ये सब संभव नहीं हो सकती है। 1 वर्ष में लड़का बहुत काफी बड़ा हो जाता है। इसलिए बलदेव प्रभु जी 1 वर्ष तक अंधे होकर के घर में बैठे रहे, और कृष्ण के साथ में नहीं खेले और कृष्ण भी ये सब लीला नहीं कर सके उनके साथ में, यह असंभव है। इसलिए जीव गोस्वामी ने एक ये दिया है, समय तालिका बनाया और उसका हिसाब दिया। उन्होंने लिखा ये उनका जन्म पूर्णिमा को हुआ और कैसे हुआ, रोहिणी जी जबकि वहां से मथुरा से कंस के कारागार से निकल करके वसुदेव जी की आज्ञा से यशोदा मैया के यहां गोकुल में गई। उस समय गर्भवती थी और उस समय में देवकी जी भी गर्भवती थी। 6 महीने के या कितना मुझे पूरा याद नहीं, 6 महीना की गर्भवती अवस्था में गोकुल से ये मथुरा से वहां गई। उस समय में देवकी जी भी गर्भवती हैं 6 महीने की। इसके बाद में जब इनका गर्भ, देवकी जी का गर्भ जबकि 10वें महीने में होता है, वो 8वें महीने में या 7वें महीने में उनका गर्भशाह हो गया, निकल करके गिर गया। किसी ने देखा नहीं, लोगों ने कहा कि उनका गर्भशाह हो गया। जोग माया जी ने उस गर्भ को लेकर के अरोहणी के यहां पर पहुंचाया। इनका तो गर्भ खत्म, अब वहां पर पहुंचाने पर वहां पर जो बलदेव प्रभु हैं रोहिणी के गर्भ में वो मूल हैं, क्योंकि ब्रज वाले हैं ना, जैसे ब्रज के कृष्ण, गोकुल के कृष्ण, यशोदा नंदन मूल हैं और चतुर्भुज कृष्ण बलदेव उनके द्वारा वसुदेव जी के द्वारा लाए जाने पर उनमें मिलकर के एक हो गए, ऐसे ही देवकी के गर्भ से योग माया के द्वारा लाए हुए जो बलदेव जी थे ऐश्वर्य नारायण जैसे, वो जब उनके गर्भ में पहुंचे तो बलदेव प्रभु जी ने आकर्षण कर लिया और दोनों एक हो गए लीला के लिए, मूल में मिल गए। जैसे कि वो उनके देवकी के गर्भ के कृष्ण उनमें जाकर के जैसे कृष्ण में मिलकर के एक हो गए, इस तरह से ही मिल गए। अब ये इसके बाद में देवकी जी को फिर गर्भ हुआ कुछ दिनों के बाद ही, और वो गर्भ 8 महीने तक रहा। 8वें महीने में कृष्ण निकल, तो उधर का 6 इधर का 8 कितना हो गया, और बलदेव जी कितने रहे, ये ऐसे 14 महीना, और वो पूर्णिमा के दिन में पूर्ण होता है, इसलिए वो 14 महीने के बाद में बलदेव प्रभु जी यहां पर प्रकट हुए। बलदेव जी का नाम लोगों ने बतलाया संकर्षण है, किस लिए कि जोग माया ने आकर्षण किया, तो सब बलदेव जी से वही बलवान ठहरती हैं और प्रभावशाली, जोग माया है क्यों, इस चीज को समझो, लिखा गया है शास्त्र में ऐसा, आकर्षण किया इसलिए उनका नाम हुआ। किंतु फिर हम लोग विचार करें तो जोग माया अधिक बड़ी हो जाएंगी, प्रभावशाली शक्तिशाली, बलदेव जी का नाम संकर्षण किस लिए है, संकर्षण बलदेव जी आकर्षण करते हैं सबको। कृष्ण में जो बल देखा जाता है ये किसका बल है, कृष्ण सच्चिदानंद है ना, सचित आनंद संबित संधनी लादनी शक्ति उनमें है, किंतु जब ये शक्तियां अलग अलग प्रकाशित होती हैं, रूप धारण करती हैं, तो संबित शक्ति के अधिष्ठात्र कौन है, और संधिनी के बलदेव प्रभु जी हैं। इसलिए कृष्ण में जो कुछ बल है वो कौन बल है, बलदेव प्रभु का ही बल है। कृष्ण में जो आनंद है वो कौन आनंद है, राधा जी आनंद है। इसलिए कृष्ण में जो कुछ बल देखा जाता है, जो कुछ उठाते हैं ये घर, जो कुछ करते हैं, ये सब है कौन? बलदेव प्रभु दिखते नहीं है, और सम्मिलित रूप में वो कृष्ण ही जैसे दिखते हैं, जैसे सम्मिलित रूप में सच्चिदानंद रूप में कृष्ण दिखते हैं। राधा जी नहीं देखती हैं, इसलिए बलदेव जी नहीं, किंतु कृष्ण का सारा आनंद जिसके द्वारा आनंदित अपने होते हैं, आनंद का आस्वादन करते हैं और दूसरों को आनंद का आस्वादन कराते हैं, वो कौन है? राधिका जी स्वयं है। उसी प्रकार से कृष्ण में जितना बल है और जितने बल दिलाते हैं जीवों को द्वारा, जीवों के अंदर में या और सब जोग माया इत्यादि का जितना भी बल है, वो कृष्ण दिलाते हैं किसके द्वारा? जिस बल के द्वारा, उन्हीं का नाम बलदेव है। अतच उनमें भिन्न भी हैं, अभिन्न भी हैं, भेदाभेद उनमें प्रकाश है। इसलिए इन ब्रह्मचारियों ने यह सब बतलाया, बलदेव का तत्व बहुत ही सुंदर। इन सब चीजों को, तत्वों को याद रखना। कहिए ये क्या होगा? अरे नहीं करेगा तुमको भक्ति नहीं होगी, ये अच्छी तरह से समझ रखो, यही हरि कथा ही बल है, ये तत्व ज्ञान भी, ये भी बल है। इसलिए इनको जान करके धीरे धीरे आगे बढ़ो। यदि ये कोई कहा जाए इसकी जरूरत नहीं, किसी तरह से भी बिना सिद्धांत के ज्ञान हुए, पहले तो भक्ति वैधी भक्ति नहीं होगी, और रागानुगा और सबकी लीला इत्यादि की तो बात ही अलग रहे। इसलिए इन तत्वों से भी मुख मत रहना, इनको जानना पड़ेगा एक दिन। यदि कहो जो गोपियों ने कौन सा तत्व पढ़ा था, अरे गोपियों ने तो इतना तत्व पढ़ा कि उद्धव इत्यादि को ठका दिया इतना। अरे कृष्ण उद्धव को क्या बात, उनके जो आराध्य देव हैं कृष्ण को भी ठका देती हैं तत्व के ज्ञान में, इसलिए उनको मूर्ख मत समझना। हरिदास ठाकुर को मूर्ख मत समझना, केवल हरि नाम करते थे, मूर्ख मत समझना, जो उनको तत्व ज्ञान नहीं थे। बड़े बड़े तत्वविदों के काम काट लेने वाले ये लोग थे। गौरकिशोर दास राज महाराज जी को साधारण मन समझना, इन्हें बलदेव प्रभु का बल है। जितना सिद्धांत है इन लोगों के हृदय में स्फूर्ति प्राप्त होता है। ये कोटि कोटि जन्म में कर करके आए हैं, या नित्य सिद्ध है ऐसा समझो, इसलिए हरि कथा की जरूरत नहीं है। उस समय में हम बाहर में जाकर के गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, हम वो उधर करेंगे, हम भागवत पढ़ेंगे चेतन, उसे कुछ नहीं होता। हरि कथा सुनो ऐसे लोगों से। बलदेव प्रभु जी नैमिषारण्य में गए, वहां पर भागवत की कथा या पुराणों की कथा हो रही, ये महर्षि सूत व्यास देव के शिष्य हैं, हरि कथा कह रहे हैं। बलदेव जी तो वहां पर पहुंचे, ओ ये तो हल मुसल धारण करने वाला, कुछ नहीं जानने वाला, मधु का पान करने वाला ब्रज का है, ऐसा समझा। उनको गुरु तत्व को नहीं समझा, कृष्ण से अभिन्न ये नहीं समझा, सम्मान उचित नहीं दिया। बलदेव प्रभु जी ने झट देखा जैसे आसन से उठ नहीं रहा, अभिवादन नहीं कर रहा, और इतना घमंडी है कि यहाँ पर सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि बैठे हैं, एक एक से तत्वज्ञ, एक एक से परम रसिक, और उनको समझता कि मैं भागवत का पढ़ने वाला हूं, इनको कुछ भागवत का ज्ञान नहीं है। इसलिए उठ करके उनको स्वागत नहीं किया। बलदेव प्रभु जी ने व्यासासन पर बैठते हुए ही वो बैठा हुआ था, और अपने हाथों से ऐसे गला लगाया और वो कट करके गिर गया। हाथ से कोई गला कटता है? आश्चर्य की बात, उसका गला कट गया, गिर गया। सब लोगों हाय हाय करने लग गए। उन्होंने कहा हाय हाय क्यों कर रहे हो, मैं जीवित कर दूं, ऐसी शक्ति जीवित कर दूं? उन्होंने कहा नहीं अब जीवित नहीं, किंतु हम लोग हरि कथा कहां से सुनेंगे। अच्छा हाँ मैं इसकी व्यवस्था करता हूं, उसका 5 वर्ष का लड़का उग्र श्रवा सूत, बस उसको लेकर के उसको गद्दी पर बैठा दिया और शक्ति संचरित किया, और वो हैं सूत गोस्वामी जी, हमारे सुखदेव गोस्वामी के शिष्य। कैसे हुए? इन्होंने भागवत का श्रवण किया, विधिवत समस्त शास्त्रों का विधिवत अपने गुरुदेव से श्रवण किया। बच्चे ने पीछे से, परीक्षित जी के सभा में थे और वो सबको जानते हैं, इसलिए कैसे हो गए? बलदेव जी की कृपा नहीं होने से ऐसे श्रीमद भागवत के परम वक्ता नहीं होते रसिक। बलदेव प्रभु जी की कृपा, यदि बलदेव जी की कृपा चाहते हैं उचित गुरु वैष्णवों को सम्मान दीजिए, इन चीज को समझिए। लौकिक व्यवहारिक सब कुछ नहीं है, परमार्थिक अपनी चिंता करनी चाहिए। जो परमार्थिक चिंता नहीं, गंभीर रहस्य में जाकर के नहीं कर सकता, ये परम तत्व को नहीं जान सकता, भक्ति उसके हाथ में कुछ नहीं लगेगी। बलदेव के हाथ से ही मरना, तब बलदेव जी के हाथ से मरना भी अच्छा है, अंततः तो मुक्ति तो हो ही जाएगी, और कुछ न हो मुक्ति हो जाएगी, मरना भी अच्छा है। किंतु वह प्रेममयी भक्ति नहीं है। आप लोगों ने सुना जे किस प्रकार से बलदेव जी सब रसों में सेवा करके भी, आसन बसन और भूषण 10 प्रकार से सेवा करके, ब्रज में चारों प्रकार की सेवा करके भी संतुष्ट नहीं होते हैं। संतुष्ट किंतु कुछ अभाव रह जाता है। तुम एक तो महाबौद्ध, उनको संतुष्टि नहीं होती, इसलिए अनंग मंजरी के रूप में मधुर अष्टम की सेवा करते हैं। महाप्रभु की लीला में भी वो जाह्नवी ठाकुरानी के रूप में है, बल्कि कृष्ण लीला में भी, कृष्ण में तो नहीं, अभी गोपीनाथ जी के मंदिर में जाह्नवी जी कृष्ण की बाएं तरफ में बैठी और राधा जी को दाहिने तरफ में बैठा दिया है। अनंग मंजरी वहां पर बैठी हैं, वो जाह्नवी देवी ने बैठाया, उनका अधिकार है बैठाने का, इसलिए जाह्नवी देवी और कोई नहीं है, नित्यानंद प्रभु जी ही है। शक्ति और शक्तिमान एक है ना, इसलिए दोनों एक है, अलग नहीं है। राधा जी कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण ही है। इसलिए जाह्नवी ठाकुरानी जी भी नित्यानंद प्रभु ही है, इसलिए उस रस में वो सेवा करने के लिए ऐसे आए। इसी प्रकार से इन्होंने दिखलाया, जो ऐसे बलदेव प्रभु जी के प्रति जो भी कोई ईर्ष्या करता है, उनकी उपासना नहीं करता और कृष्ण की आराधना करता, तभी वो पाषंड है। जैसे कि द्विज बंदर कृष्ण लीला में भी, महाप्रभु जी के लीला में भी कुछ लोगों ने नित्यानंद प्रभु को माना अद्वैत वंश के लड़के अद्वैताचार्य के, केवल अच्युत ऐसे थे जो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को माना, और उनके बाकी 6 लड़के या 7 लड़के थे वो नित्यानंद प्रभु से को नहीं मानते, इसने विवाह कर लिया इसलिए, और वो महाप्रभु को भगवान के रूप में मानते और उनको नहीं मानते थे। उनकी बड़ी दुर्गति हुई और अद्वैताचार्य ने उनको वंश से तलाक कर दिया, अच्युत को अपने वंश में केवल रखा। द्विज को किस प्रकार से मारा है ये आपको पता है। कभी कभी कुछ विरोधाभास भी देखता है इनके जीवन चरित्र में, जैसे कृष्ण का की सेवा होनी चाहिए और कृष्ण को कोई यदि गाली देता है तो क्या होगा, ये अपराध है ना। जैसे वो कौन था, बैन ने कृष्ण का उल्लंघन किया और उसको गाली गलौज किया, अंत में उसे क्या हुआ, कुष्ठ व्याधि न कि नरक जाना पड़ा, किंतु उसके बेटे कौन से, पृथु महाराज, उनकी कृपा से उनका कुछ थोड़ा सा उद्धार हुआ, नहीं तो नहीं होता। इसलिए कृष्ण को गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, तो मैं समझता कि वो उतना गाली नहीं दे सका जितना कि गोपियां उसे लंपट धोत चोर चोटता क्या नहीं कहती हैं, उनके मुख में जो आता है ने? तो ये दोष नहीं हुआ, अपराध नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दो बात होनी चाहिए। यदि कोई प्रीति गर्भ में कुछ करता है, गाली गलौज यदि करता है, तो ये भक्ति है प्रीति गर्भ होने। प्रीति गर्भ मैंने क्या, प्रीति में अटपटा बात बोलता है, जैसे कि केवट राम के लिए कहा, ऐसे अटपटी कोई बात कृष्ण के लिए कहे, किंतु प्रेम में पगी हुई हो तो ये भक्ति की चरम अवस्था है। किंतु द्वेष मूल से यदि उनकी प्रशंसा भी करता है तो ये क्या है, अपराध है, महा अपराध। जैसे जरासंध, कंस या और जितने हैं, कहते हैं कि आप कितने वीर हैं, कितने वीर हैं जो आप सन्मुख में अपना मुख नहीं दिखा सकते, आप पीठ दिखाते हुए चले जा रहे हैं। आपकी मैया धन्य है जो आपके जैसा वीर को उत्पन्न किया। ये सब क्या चीज है, ये जरा संधकार है, माने कृष्ण भागते हुए रण छोड़ रहे जा रहे हैं, उसमें ये मालूम होता है कि प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु प्रशंसा नहीं है, ये क्या है, विद्वेष मुख से ये है। इसलिए ये सब भक्ति तक्ति नहीं है। और इसके विपरीत यदि प्रति गर्भ से कोई कृष्ण को लंपट चोर इत्यादि भी, जार पुरुष भी कह रहे हैं, कृष्ण का हृदय वेद स्तुति से अधिक बढ़ेगा। बलदेव प्रभु में भी कुछ ऐसे रसाभास दोष मिलते हैं। दुर्योधन का पक्ष लिया और वो चाहते थे जो दुर्योधन इस प्रकार से न मरे, यह विरोधाभास दिखता है। यहां पर वैसे ही लीला पुष्टि समझो, सुभद्रा के हरण के समय में बलदेव प्रभु जी फल और मूसल लेकर के दुर्योधन को, अर्जुन को मारने के लिए आए, कृष्ण मिल गए बीच में। कृष्ण से पूछा, जैसे तुमको कोई रोष नहीं हो रहा है, तुम्हारा विरक्त तो सब समाप्त हो गया हम लोगों की बहन को, और हम लोगों के जीवित रहते हुए यहां पर रहते हुए, और हरण करके अर्जुन ले गया, और वो भी सन्यासी वेश बना करके, और हमको भी धोखा दिया, तुमको भी, और इस प्रकार से ले गया, तुमको कहीं लज्जा नहीं आ रही है? तो कृष्ण ने कहा, जो रुक्मिणी हरण के समय में आप लोगों को लज्जा आई, आप क्यों उसके घर में जाकर के, शिशुपाल के साथ में उसका शादी हो रही थी, और तुमने जाकर के और हमने जाकर के उसके विवाह के मंडप में जाने वाली, और तुम वहां से हरण करके ले आए, आप वीर बनते हैं। तो अर्जुन कर लिया, तो ये क्या हर्ज हुआ, ऐसे वीर के साथ में ही हमारी बहनी की शादी होगी, दुर्योधन जैसे हिजड़े के साथ में नहीं होगी। पानी पानी हो गए। ये सब किस लिए, लीला पुष्टि। यदि बलदेव जी ऐसा नहीं करते, क्या वो जानते नहीं थे अर्जुन ये अर्जुन है, नहीं जानते थे? जान करके जोगमाया का आश्रय करके वो भी भूल गए थे, क्योंकि वह नर लीला है, नहीं होने से ऐसी लीलाएं जो हैं बड़ी मधुर रस लीलाएं ये संभव पर नहीं थी। इसलिए बलदेव प्रभु भी ऐसा विरोधाभास करके दिखलाते हैं, कृष्ण की लीला पुष्टि के लिए साधारण लोगों के लिए समझना बड़ा भारी कठिन है। इस तरह से उनके बहुत से लीला चरित्र हैं। अब बाकी हम लोग मथुरा में कुछ गांठ खोलेंगे, आज यहीं तक रहे। आप लोग हरि कथा सुन करके राधा कृष्ण के प्रति, बलदेव जी के प्रति, उनके परिकरों के प्रति आप लोगों की श्रद्धा हो और भजन कीजिए। ऐसे जो लोग हरि कथा सुनते हैं उनके समान जगत में और कोई नहीं है। हरि कथा में रुचि हो, हरि कथा बोलने में भी अर्जुन के घोड़े होने चाहिए। कृष्ण लगाम खींच रहे हैं और घोड़े क्या कर रहे हैं, ऐसे टपक रहे, मानते रहे, हिन कर रहे। तो ऐसे भी हमारे ब्रह्मचारियों को मैं देखना चाहता हूं जो बोलने पर भी माने नहीं, किंतु शुद्ध सिद्ध सिद्धांत होना चाहिए, गड़बड़ सिद्धांत नहीं। इस तरह से सिद्धांत में प्रवेश करो और भजन करो, तुम लोगों का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। महाप्रभु की आप लोगों पर कृपा हो, बलदेव प्रभु की गौर प्रमाण। अभी हम लोग मथुरा जाएंगे।